भारत में प्राचीन काल से कला और संगीत की समृद्ध परंपरा रही है, लेकिन हजारों साल के इतिहास में बहुत से स्वर गुम हो गए। संगीत की समृद्धशाली परंपरा से कई स्वर लुप्त हो गए। ये सब ऐसे संगीत थे जिनके बारे में इतिहास में भी कुछ दर्ज न मिले। कोलकाता की एक शिक्षिका चंद्रा मुखोपाध्याय ने ऐसे ही में एक असंभव कार्य कर दिखाया है। लगभग 6,000 ऐसे विलुप्त हो चुके लोकगीतों को पुनः जीवित किया, उनको क्रमबद्ध किया, पुस्तक लिखी। ये गीत कहाँ गाए जाते हैं, क्यों गाए जाते हैं, सब कुछ एक सटीक वर्णनात्मक तरीके से लिपिबद्ध किया। ये कार्य आपको भले इतना उत्साहित ना करे, क्योंकि आज की पीढ़ी शोरनुमा संगीत में खो गई, लेकिन चंद्रा जी ने एक इतिहास को मिटने से बचा लिया है। कौन है ये 6,000 गीत? ये सब गीत बंगाल और बांग्लादेश में गाए जाते रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये कि ये सारे गीत महिलाओं द्वारा ही गाए जाते हैं। हर स्थिति के लिए एक गीत। घर के काम जैसे खाना बनाना, झाड़ू देना, उस समय महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गीत। सामाजिक उपलक्ष्य जैसे जन्म, बारात, वयस्क होने पर इत्यादि। यही नहीं, स्वतंत्रता संग्राम को दर्शाते ये गीत। ये गीत पीढ़ियों दर पीढ़ियों महिलाओं द्वारा गाए गए। इनका कोई लिखा हुआ स्वर नहीं, कोई इतिहास नहीं, सब कुछ बस महिलाओं द्वारा ही आगे वाली पीढ़ी को दिया जाता गया। चंद्रा जी ने इन गीतों को लिपिबद्ध किया, इनको एक जगह इकट्ठा करके पुस्तक में दर्ज कर दिया। इसके लिए वो गांव-गांव गईं, महिलाओं से मिलकर इन गीतों को समझा, उनकी रिकॉर्डिंग की, इनकी उत्पत्ति जानी और ये क्यों गाए जाते हैं ये भी समझा। निसंदेह ये एक बहुत बड़ा काम है। चंद्रा जी हिंदी बहुत कम जानती हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने इस अनुभव के बारे में SBS को बताया।
आई एम चंद्रा मुखोपाध्याय, रिटायर्ड स्कूल टीचर फ्रॉम कोलकाता। बिसाइड्स दैट, आई लव टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट कलेक्टर एंड रिसर्चर ऑफ Women's songs of Bengal. Here, Bengal means undivided Bengal, and of course, it's rural Bengal. Though I have not yet gone to Bangladesh, I have thousands of songs from places like Dhaka, Mamansingha, Faridpur, Pabna, Rajshahi, Rongpur, Sylhet, Noakhali, Barishal, and a few from Chattogram and other parts like Dinajpur, Joshur, etc. And I have collected these songs from the elderly women living in the refugee colonies scattered all over West Bengal. They have left their home, they have left their ancestral property, but they have carried their music with them and still preserve them in their memories. I have also gone myself to the remote villages of almost all the districts of West Bengal. It's a rich, rich collection of women's music, which is completely a different genre. Women of Bengal sing songs not only for entertainment. Actually, the songs or music is a part of life. They communicate with the nature or the supernatural elements through songs from time immemorial. These songs are not composed or sung for entertaining others. They are not presentational music. Rather, they are participatory music. They are sung for life. They express joy and pathos. They give the courage to combat unnecessary or circumstances. They also express the pathos. They also express their spirited protest. Everything of life are included in these songs.
चंद्रा जी का समर्पण अपने इस कार्य के लिए इतना ज़्यादा था कि एक बार उन्हें एक गाना सुनाई दिया। पता करने पर पता चला कि वो एक बारात में कुछ महिलाएं दूर पर गा रही हैं। चंद्रा जी वहां पहुंच गईं और पता चला कि ये गीत बांग्लादेश में गाया जाता है और वहां पर जो महिलाएं गा रही हैं उनके पूर्वज बांग्लादेश से आए थे, तब से ये गीत यूं ही चला आ रहा है।
Though I am a student of literature, I had a passion for music from my very childhood, but I didn't get the scope to learn them at that time. But in my youth, I started learning in a traditional way, classical music, and then Rabindra Sangeet, that is songs of Tagore. I had some training in them, but I had a craving in me for know the people's music. Music, what part music play in their life, it interested me. And at that time, I read a book by Devi Prasad Chattopadhyay, Lokayata Darshan, on Charvak philosophy of India. And it changed my outlook totally, started learning folk music. I had discussion with Khalid Chaudhuri, the renowned stage personality. Khalid Chaudhuri, Nihar Barua and Himangu Bishash, they formed an institute for preservation of folk culture and folk music. I contacted them and they sent me to Mrinal Barua, who was from Gwalpara district of Assam, but which was a part of Bengal earlier. Mrinal Barua, himself a psychologist, gave lesson to Gwalpariya music. And there he one day gave us a song which he called Meli Geet, the song of women. It was a marriage song. And when I wanted to know more about it, he sent me to Nihar Barua, his mother. Nihar Barua was an exceptional woman, exceptional personality. In the early days of 1920s, she began to collect the rural tunes in Gwalpara and adjacent areas. And he had a rich collection of them. She had a rich collection of them, and she wrote about them in 1940s and 50s.
सोचिए ढूंढ ढूंढ कर 6,000 गांव गांव जाकर इकट्ठा करना बहुत मुश्किल काम है. दो पुस्तकों के माध्यम से ये गीत अब जनता के बीच आ गए हैं. ये सारे गीत महिलाओं द्वारा गाए जाते हैं और कुछ तो उनके द्वारा ही समय समय पर रचे गए हैं.
हाँ, देयर आर ऑलमोस्ट 6,000 ऑफ सच सॉन्ग्स इन माय कलेक्शन. सम ऑफ देम आर ऑफ टू लाइंस, सम ऑफ देम आर फोर. Each and every song is special to me because there are rain compelling songs. There are songs for worshipping the trees. There are songs of giving birth, the process of procreation. There are songs of love, there are songs of sex and sexuality, what not.
चंद्रा जी का ये प्रयास जो पिछले 35 सालों से जारी है, एक ऐसा प्रयास है जहां पर वो इतिहास को विलुप्त होने से बचा रहे हैं. लखनऊ से फैसल फरीद.